मैं सुल्तान कहूँ जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन बिचरे हैं। 270वीं गाथा हुई थी, उसके बाद का ये कलश हुआ था। अब उसके बाद में ये गाथा तात्परिवृत्ति टीका में आती है, उसकी चर्चा थोड़ी करेंगे बाद में। 271वीं गाथा पढ़ेंगे अपन। जा संकल्प विकल्प ताकम मम गुण दिस्वे अस्वे जनयम कहते हैं जब तक आत्मा में संकल्प और विकल्प हैं तब तक स्वानुभूति नहीं होती, और जब तक स्वानुभूति नहीं होती है तब तक यह जीव शुभ अशुभ कर्मों में व्यस्त रहता है। देखो इसमें और विशेष बात तो कुछ नहीं है, संकल्प और विकल्प के बारे में समझने लायक है। संकल्प मिथ्यात्व का सूचक है और विकल्प चारित्र मोह का सूचक है। दर्शन मोह के उदय में होने वाला भाव संकल्प है, चारित्र मोह के उदय में होने वाला भाव विकल्प है। दूसरी जगह और बात भी कही है, यहां तो ये कह रहे हैं देखो कि जब तक यह आत्मा बाह्य विषय रूप शरीर स्त्री पुत्र आदि ये मेरे हैं इत्यादि रूप ममत्व मैं संकल्प करता है, ये मेरे हैं ये संकल्प किया उसने, माने उन्होंने अपनापन स्थापित किया, इसका नाम है संकल्प। और अंतर में हर्ष विषाद रूप विकल्प करता है। अब साधारण हर्ष विषाद होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को भी होता है, मुनिराजों को भी होता है। कोई अच्छा धर्म प्रचार का कार्य देखें तो उन्हें हर्ष हो सकता है, धर्म के विरोध का कार्य देखें तो थोड़ा खेद भी हो सकता है, और भी कई कारणों से हो सकता है। तो वो विकल्प अल्पबंध के कारण है, लेकिन जब वे संकल्प के साथ होते हैं, पर पदार्थों में एकत्र बुद्धि के साथ होते हैं, तब वे बहुत भयंकर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तात्र मोह संबंधी भी दो शामिल हो गया और दर्शन मोह संबंधी भी शामिल हो गया। यानी लोग क्या कह रहे हैं, मैं दूसरे को मार सकता हूं, ऐसी मान्यता पूर्वक मानने का विकल्प आया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और कदाचित ऐसी मान्यता अंदर में हो कि मैं तो किसी को मार दिला सकता ही नहीं हूं, और कदाचित क्रोध में मारने माने पीटने की बात कर रहा हूं, मैं जान से मारने की नहीं कर रहा हूं, कदाचित जान से मारने का भी आ सकता है यदि क्षत्रिय लोगों को युद्ध के मैदान में, कि वो हमारे तुम्हारी बात नहीं है, नहीं ना? तो ऐसा जो भाव है वो ज्ञानी जीवों के भी होता है, वो विकल्प रूप भाव, लेकिन संकल्प के साथ होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। देखो ये तो मारने की बात है, अब बचाने की बात करो, जब बचाने का भाव है तो वो विकल्प है। अब वो अल्प पुण्य बंध का कारण है, लेकिन यदि ऐसी मान्यता के साथ हो वो मान्यता का मिथ्यात्व का भाव का साथ भी लगेगा तो वो फिर बचा पुण्य नहीं होगा। अरे खेल के पुण्य की मिथ्यात्व को ढूंढकर आपके सामने कोई कीमत नहीं है, इसलिए जगत के जीवन को जो पुण्य दिखाई देता है वो भयंकर पाप दिखाई नहीं देता। क्यों देखो हम सब लोग कि लगभग सभी लोग मिथ्यात्व की भूमिका नहीं है, तो उन्हें वो बचाने का भाव भी कितना भयंकर नुकसान करने वाला है इसका उन्हें अंदाजा नहीं है ना। तो उसे थोड़ा पुण्य तो हम विचार करके देखें अभी कि छोटे बड़े सभी थोड़े से हमें स्वभाव आ जाते हैं भगवान की भक्ति करने के, पूजा पाठ करने के, दान देने के, किसी पर दया करने के, तो हम अंदर से प्रफुल्लित नहीं होते कि अभी तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे हो रहे हैं, अभी मेरा बहुत उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है। माने इन शुभ परिणामों में एक विशेष प्रकार की संतुष्टि होती है कि नहीं। अब वो जो संतुष्टि है वो मिथ्यात्व नामक महापाप है। वो मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक सेठ जी शाम के 9 बजे की गाड़ी से कहीं जाने वाले थे, तो वो जब रवाना होने लगे तो नौकर ने पैर पकड़ लिए कि सेठ मैं आप आज आपको नहीं जाने दूंगा। मैंने क्या बात करता है, आज बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है, लेकिन वो तो अड़ ही गया कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जब उसे पूछा कि क्यों, तो उसने कहा मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा है। कि क्या देखा, अभी अभी देखा कि ये गाड़ी यहां से गई और आध घंटा ही चली है और आगे एक नदी है, उसके पुल पे पुल के टूट जाने से पूरी की पूरी गाड़ी नदी में गिर गई और कोई नहीं बचा। इसलिए मैं किसी कीमत पर आपको जाने नहीं दूंगा, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। यद्यपि सेठ जी को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो जिद पर अड़ गया और आखिर उस जिद्दा जिद्दी में वो गाड़ी निकल गई, मतलब चूक गई। नहीं चूकती तो वो जाए बिना नहीं रहते। और फिर सुबह के अखबारों में देखा तो उसी पुल पर वही गाड़ी, पुल टूट गया था, गिर गई थी और एक भी आदमी नहीं बचा था, ये समाचार उस अखबार के पृष्ठों में छपा था। ये तो साधारण बात हो गई, आप रोजाना देखते हैं। फिर सुबह सेठ जी ने उसे बुलाया और उसे 500 रुपए का इनाम दिया। किसको? उस चौकीदार को, और नौकरी से निकाल दिया। क्या किया कि नौकरी से निकाल दिया। क्यों? इनाम इस बात का कि तूने मेरी जान बचाई। और नौकरी से निकाला इसलिए कि रात के 9 बजे ही तू सो गया। सोए बिना सोए तो स्वप्न नहीं देखा जाता है ना, तो चौकीदारी पे तुझे कैसे रख सकते हैं। चौकीदार की ड्यूटी तो रात भर जागने की होती है। तू 8 बजे ड्यूटी पे आया और 9 बजे तूने स्वप्न देख लिया। जब सब जगते हैं तब भी सो गया, ऐसे चौकीदार को रख के क्या करें। और हमको हाँ 500 रुपए का इनाम, हमें वो 500 रुपए का इनाम दिखता है और नौकरी से निकाला नहीं दिखता है। ऐसे ही हमको जो शुभ भाव हुआ थोड़ा, उससे जो अल्प पुण्य बना होगा वो दिखता है, और उसी वक्त उस मान्यता पूर्वक वो मिथ्यात्व का महाबंध हुआ वो हमें दिखाई दे। ये सब पाप संकल्प विकल्प में ये फर्क है। वैसे विकल्प इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन यदि वो संकल्प के साथ हो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। आयुर्वेद में कुछ औषधियां होती हैं जो रस होते, रस का नाम सुना कभी? जो बहुत ही महंगी दवाइयां होती हैं, लेकिन वो वास्तव में स्वयं में किसी भी बीमारी की दवाई नहीं है। वो دوائیاں تو اور ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ رس دیے جاتے ہیں تو وہ دوائیں 10 گنا کام کرتی ہیں. جیسے چندر پربھا بچی یہ پیشاب کی بیماریوں میں دوائی دی جاتی ہے, خاص کر بڑھاپے میں جب بار بار پیشاب جانا پڑتا ہے اور پیشاب روکنے کی شکتی کمزور پڑ جاتی ہے تو ان کو چندر پربھا بٹی دی جاتی ہے, اور زیادہ ہوں تو اس کے ساتھ بسنت کسما کر رس دیا جاتا ہے. تو وہ چندر پربھا بٹی تو دوائی ہے, اکیلی دو تو بھی وہ لابھ کرے گی, لیکن ساتھ میں بسنت کسما کر رس دو تو وہ 10 گنی 100 گنا کام کرے گی. اکیلا بسنت کسما کر دو تو کچھ کام نہیں کرے گا, وہ تو ایک طرح شکتی کی دوا ہے, ایسی طاقت کی نہیں, اس دوائی میں شکتی ہو جاتی ہے. دیکھو کوئی دوائی کھانا تو اچھے وید سے پوچھ کے ہی کھانا, میرے ادھارن سے نہیں. کیا میں تو جو سنا ہے پڑھا ہے اس کے آدھار پر آپ کو کہتا ہوں, میں کوئی وید نہیں ہوں, میں تو صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ بات کہتا ہوں. تو یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے شبھ اور اشبھ بھاو ہیں, وکلپ ہیں, وہ وکلپ متھاتو کے رس کے ساتھ کئی گنا پھل دیتے ہیں, لیکن وہ پاپ کے ارتھ میں, پن والے میں نہیں, شبھ بھاو ہو گئے تو, اور سما درشن کے ساتھ ہوں تو وہی شبھ بھاو کئی گنا پھل دیتے ہیں. اس طرح سے ان کا اپیوگ ہے. اس لیے واستو میں ہمارا دھیان, دیکھو یہ سب ان بھاووں کے, ان کریاؤں کے وکل ودھ نہیں ہے, یہ تو گرست کے جیون میں بھومکا کے یوگ ہوتی ہی ہیں اور ہونی ہی چاہیے. پرجناگم میں بھی خوب جم کے ان کی پریرنا دی گئی ہے, تو کبھی کبھی تو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے وہ ہم سچ مچ کر سکتے ہوں, جو ہم کر نہیں سکتے ایسی بات کی بھی اتنی جم کر پریرنا دی جاتی ہے کہ جیسے ہم کو لگتا ہے کہ جیسے ہم سچ مچ کر ہی سکتے ہیں. گرودیو شری اس بات کا بہت دھیان رکھتے تھے, اس لیے وہ کبھی کسی کو ایسی زبردست پریرنا نہیں دیتے تھے, نہ کوئی ورت پالنے کی, نہ دان دینے کی, نہ تیرتھ یاترا کی, کسی چیز پر وہ اتنا ادھک بل نہیں دیتے تھے. وہ چیزیں وہ سوئم بھی کرتے تھے اور سادھرمی کریں تو ان کو کوئی زیادہ برا نہیں لگتا تھا, تھوڑی بہت انمودنا بھی کر دیتے تھے, لیکن جب ان سے پوچھو تو وہ ایک ہی جواب دیتے تھے, کہا نہیں دھرمیاتما کی دیو کی کوئی ایسے بھاو آئے بنا رہتے ہی نہیں ہے. ایسا وہ اسے پوچھا کہ بھائی بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں کو اسے دودھ پلانا چاہیے کہ نہیں, تو وہ ایسی بھاشا میں جواب ہی نہیں دیں گے کہ نہیں نہیں ضرور پلانا چاہیے, ضرور پلانا چاہیے, نہیں تو وہ پھر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, ماتاؤں کو ایک گھنٹے کا اپدیش دے دیں. وہ کہتے تھے نہیں نہیں, ماں جو ہے اس کو بچے کو اس سمے پہ دودھ پلانے کا بھاو آئے بنا رہتا ہی نہیں ہے. ایسی بھاشا بولتے تھے, اتنا ایسا کہہ دو نا کہ ایک کرنا چاہیے, دان دینا چاہیے, کہ نہیں نہیں دان دینے کا بھاو دھرماتما کو آئے بنا رہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جیسے اسے اور کریائیں ہوتی رہیں, یہ سب جانتا ہے نا, وہ چاہتا ہے, تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دھرم کے کام بھی چلتے رہیں, تو ان میں سہیوگ کرنے کا بھاو اس کا ہوتا ہی ہوتا ہے. خیال میں ہر ایک آدمی کو ویکتیگت سہیوگ کرنا وہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن ویکتیگت تو ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں پوری طاقت سے 8-8 10-10 گھنٹے محنت کر کے اور اپنی وہ ساری سویدھائیں جٹاتا ہی ہے, पर तुम्हारा थोड़े बहुत उसका वो सहयोग कर देने से उसकी बहुत बड़ी समस्या हल नहीं हो जाने वाली है। वो 10 घंटा उसको काम करना ही है, और मान लो तुम इतना अधिक दे दो कि उसकी समस्या भी हल हो जाए तो अभी वो काम बंद करने वाला नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहूंगा तो कहे उसे काम की करने का भाव आए बिना रहता ही नहीं है। ऐसी कहते देखो अभी मैं जो कहता हूं तुम अपने संग में विचार में प्रयोग करके देखो। मैं आप ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग के जीवन में प्रयोग करो, विचार में कि एक आदमी को 10,000 रुपये महीने की वो नौकरी करता है। अब 10,000 रुपये मुझे नहीं पता कितने रुपये बैंक में जमा कराओ तो 10,000 का ब्याज मिलेगा महीना का, आप लोग बता सकते हो जल्दी, लेकिन मेरे को कुछ अंदाजा नहीं है। मान लो 10 लाख रुपये का होगा, गलती हो तो सुधार लेना। वो कहे ये 10 लाख रुपया मैं तुम्हें देते हूं, बैंक में जमा कर दिए हैं और तुमको कि पैसे नहीं मिलेंगे, हर महीने 10,000 रुपये महीना मिल जाया करेगा और 30 वर्ष बाद बुढ़ापे में तुम्हें चाहोगे तो पैसा भी मिल जाएंगे। तो मैं पूछता हूं वो आदमी नौकरी छोड़ देगा और 24 घंटा धर्म ध्यान में लग जाएगा? है कोई आदमी ऐसा हिंदुस्तान में जो खोज के आप लाओ, कहेगा आपको उस वक्त लेने के लिए, क्योंकि नहीं तो आप दोगे नहीं। लेकिन फिर वो छोड़ेगा नहीं, उसी को नहीं छोड़, उसको छोड़वा भी दोगे तुम तो दूसरी तलाशेगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो रह नहीं सकता। वो जो रोटियों के लिए नहीं कमाता है उसको जैसे अपन को भूख प्यास लगती है ना, ऐसी उसको ये कमाश लगती है। वो बिल्कुल बंद नहीं करेगा किसी कीमत पर, वो अपना कुछ ना कुछ जुटाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने विषय कसाई के लिए तो 10-10 घंटा मेहनत करके रोजाना वो सब सामग्री जुटाएगा ही, वो नहीं जुट पा रही है, थोड़ा आप सहयोग कर दो थोड़ी अच्छी और हो जाएगी तो अच्छी बात है, उसकी बुरी बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो धार्मिक काम ऐसी प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं रहे, मैंने वे कोई दुकान नहीं खोल के बैठे हैं, ख्याल में आई ना, तो ऐसे ऐसे धर्म काम तो तुम्हारे सहयोग से ही चलेंगे। तो गुरुदेव भी उनको इस भाषा में ही बोलते थे कि उसको ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है, आता ही है, ऐसा बोलते थे। क्यों? क्योंकि अन्यथा वो वजन न पड़ जाए कि मैं कर सकता हूं, कि मैंने किया है, और किसी को मैं वो उत्साह भरने की बात नहीं है उसमें। अशुभ भाव के साथ तो है ही नहीं, अशुभ के साथ तो भी उसे पुण्य बंधने ही वाला नहीं है, पापी बंधने वाला है। अभी मुझे नहीं मालूम, मैंने पूरी गोष्ठी सुनी नहीं है, अब आघात या कर्म के बारे में क्या क्या बोला है लोगों ने, मेरे भी बहुत विचार हैं और मैं भी यही कहता हूं कि पुण्य पाप का फर्क तो घातीय कर्मों में पड़ता है। घातीय कर्म तो सब पाप ही पाप रूप है, और गजब की बात यह है कि घातीय कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उनसे पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है। देखो पाप के उदय से जो भाव होते हैं, सबसे खतरनाक पाप है मोहिनी कर्म। ये जो राग होता है ना, ये चारित्र मोहिनी कर्म से यह है। अब इस राग का मैं दूसरा नाम बताऊं ना तो वो ऐसा है कि फिर आप उसे करने की सोच ही नहीं सकते हो। बता दो, बताना ही पड़ेगा। ये राग कसाय का नाम है भाई साहब, राग करते हो मैंने कसाय करते हो। क्यों? कि राग और देश में 25 कसायें बढ़ती हैं, 4 प्रकार का अनंतानबंदी क्रोध, 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान और शोक भय जुगुप्सा, और एक क्या है अरति। ये 12 कसाएं देश रूप हैं और बाकी की 13 कौन? 4 प्रकार का लोभ, 4 प्रकार की माया और हास रति और स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये कसाएं राग रूप हैं। अब राग करना माने कसाय करना है। अब राग के तुमने भेद कर दिए, शुभ राग और अशुभ राग, तो शुभ कसाय और अशुभ कसाय होगी। अब आप समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? अब आपने कहा कि हमने शुभ भाव किए, शुभ राग किया दान देने का, तो उसका मालूम अर्थ क्या हुआ? आपने शुभ कसाय की। अब कसाय के साथ शुभ जरा अच्छा लगता है आपको? लेकिन भैया सर, राग का अर्थ ही कसाय है। अब वो एक शब्द बलत देते हैं तो आपको बुरा लगता है, और वो शब्द को इसमें कहते रहते हैं तो धर्म लगता है, शुभ राग धर्म लगता है। हम कहें कसाय तो पूरा अधर्म है क्या? नहीं, कि वो भी धर्म है कहीं से? कसाय करना तो अच्छा नहीं है ना, कि कसाय करना तो अच्छा नहीं है, और राग शुभ अच्छा है। तो कसाय के ही तो नाम है, तो इतनी से अर्थ है कि वो शुभ प्रयोजन के लिए की गई कसाय है। मैं कभी कभी कहता हूं तो लोगों को ज्यादा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग मुझे बुलाते हैं, बड़े बड़े समुदाय जब इकट्ठे होते हैं तब वो कोई ना कोई ऐसा महान शुभ काम कर रहे होते हैं, जैसे पंच कल्याणक है, कोई बिल्डिंगें बनाई हैं, जो कुछ भी कराई है। अब मैं जब ये बात बताता हूं तो उन लोगों को बुरा लगता है, क्या करूं? ये तो मेरी वाणी में इतना ज्यादा रस नहीं होता और इतनी मरम की बात मैं नहीं कह सकता होता, तो कोई मुझे बुलाने वाला नहीं था। बुलाने वालों की ये मजबूरी है। क्यों? क्यों बुलाए बिना जनता नहीं आएगी, जनता जतेगी नहीं, कहेगी नहीं। अब थोड़ा नमूना बताऊं उसका, कि मैं ये कहता हूं कभी कभी, कहता है तुम अपने घर का मकान बनाओ और चाहे मंदिर का मकान बनाओ, तो नींव खोदने में जो पाप लगता है, माने जो जीव मरते होंगे उसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, सांप भी निकल जाते कि नहीं, तो वो क्या फर्क पड़ता होगा? मंदिर की नींव में वो नहीं मरते हो। अब तुम्हें समझते हो कि मैं मंदिर बना रहा हूं तो मुझे पुण्य लगना चाहिए, और वो करुणानियों वाले तुम्हें लगवा भी देंगे। नहीं, तुम्हें लग भी जाएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? तुम नक्शा पास कराने जाओगे और वहां जो घूस देनी पड़ेगी तो मंदिर के लिए भी लोग छोड़ देते होंगे। क्यों? माने जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप घर के मकान बनाने में होते हैं, वे सब के सब मंदिर के बनाने में भी वैसे ही होते हैं, उपयोग भी वैसे ही खाता है। मैं वो ज्यादा गहरा नहीं कहना चाहता हूं, ख्याल में आई ना? कभी कभी तो उसमें और ज्यादा हो जाता है, समझिए ना आप इससे। तो अभी ये जब सारी प्रवृत्ति वैसी है तो उसमें थोड़ा बहुत शुभ भाव सब लोग में बैठ के भगवान की आराधना करेंगे, धर्म की ऐसी थोड़ी सी कल्पना होए उसके अंदर, और मान के शायद एक का भाव नहीं होए तो कदाचित थोड़ा बहुत पुण्य बनता होगा, है ना? लेकिन वो जितना बड़ा समझ रहे हैं और जिसके भरोसे वो संसार सागर तरना चाहते हैं, वो कुछ होने वाला नहीं है। माने इसमें से संसार समुद्र में यदि डूबे हैं तो एक कदम भी किनारे की तरफ बढ़े हैं ऐसा नहीं है, इतना समझ लेना। पर लौकिक अनुकूलता का पुण्य थोड़ा बन जाता होगा तो बन जाता होगा। ये पेज नंबर क्या है? मेरे बहुत पेज बदल गए। हाँ। तो इसने ये बात मैंने कही। अभी अपन को गाथा पढ़ना है 271। ये कुछ इस गाथा में कुछ विशेष बात नहीं है, जिन अध्यवसान भावों की चर्चा हम अभी तक करते आए हैं उनके 8 नाम इसमें गिनाए हैं। और उसकी उपयोगिता ये है कि शास्त्रों में कहीं आपको अध्यवसान लिखा होगा और कहीं वो कुछ और लिखा होगा और उनको बंध का कारण कहा गया होगा, तो तुम घबराना नहीं कि वे तो कह रहे अध्यवसान से, यहां तो विज्ञान से लिखा है, यहां तो बुद्धि से लिखा है, ऐसा विकल्प आएगा ना। तो बताते हैं कि अध्यवसान शब्द का जो भाव है वो 8 शब्दों से व्यक्त किया जाता है। पढ़ो वे 8 शब्द कौन कौन से हैं।
बुद्धि व्यवसाओ भी अच्छाणम मलियम एक सबम चित्तम भावो परिणाम व्यवसाय बुद्धि मती अद्वसान अरवे ज्ञान भी एकार्थवाचक है सभी भाव चित्त परिणाम भी।
व्यवसाय बुद्धि मती अद्वसान विज्ञान भाव चित्त परिणाम 8 हो गए ना, ये सब एकार्थवाची हैं। अब कहीं लिखा ना अध्यवसान से, कहीं लिखा व्यवसाय से, व्यवसाय लिखा हो तो तुम नहीं समझोगे, तो उसे अध्यवसान है, मतलब व्यवसाय से बंद होता है माने अध्यवसान से। बुद्धि लिखा होगा, बुद्धि कहाँ लिखा होता है, फिर कहते एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि आता ना, भोक्तृत्व बुद्धि, तो बुद्धि माने वो अध्यवसान, समझ गया ना। और अब एक नाम अध्यवसान भी है, एक मती भी नाम है। अब मती ज्ञान का भी एक नाम मती है, पर यहां पर ऐसी बुद्धि, भाई मति और बुद्धि एक ही बात है ना, और विज्ञान भी बोलते हैं इसको, और भाव और चित्त और परिणाम, ये 8 शब्द हैं, और इन 8 शब्दों से इस बात को कहा जाता रहा है। अब इनके सामान्य से व्युत्पत्ति अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ समझते हैं ना कि बुद्धि कैसे बनी, मति मननम मति ऐसे बने, ऐसे सामान्य अर्थ आचार्य देव ने किए हैं। और वैसे मोटा मोटा तुम जानते हो मति माने बुद्धि होती है, बुद्धि माने मति, वो है ये 8 नाम से इनको आता है। अब ये सब त्यागने योग्य हैं। इसके बाद जो ये कलश है ये बहुत मार्मिक है, और पूरे इस प्रकरण का उपसंहार कह लो चाहे सार कह लो इस कलश में भरा हुआ है, और अगली गाथा का ये सूचक भी है, यानी सारे विषय को समेट कर उनमें ये बात कही है। पढ़ो इसे।
सर्वात्र अध्यवसानमेवमखिलम् त्याजम् युधोक्तम् जिनैः तन्मन्ये व्यवहारेव निखिलो अन्याश्रयास्त्याजिता सम्यग् निश्चयमेकमेव तदमि निष्कम् किम शुद्ध ज्ञान घने महिमनि निजे वर्णन्ति संतोधतिम सभी अध्यवसान त्यागने योग है यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए अन्यासित व्यवहार त्यागने योग है परम शुद्ध निश्चय नय का जो गेय है शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है यदि ऐसी है बात तुम निजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे।
तो कितना मार्मिक है, सर्वत्र अध्यवसान एव अखिलम त्याज्यम यद जिनई युक्तम। जिनेन्द्र भगवान ने ये बात कही है कि सब जगह कहीं भी हो किसी भी के लक्ष्य हो अध्यवसान भाव त्यागने योग्य हैं। सभी प्रकार के अखिलम है ना, अखिलम माने सभी प्रकार के, कैसे भी अध्यवसान भाव हो, माने मैं ये करता हूं मुझे ये करना है, जब मंदिर बनाने का कर्ता बनना हो चाहे घर के मकान का बनाने का कर्ता है, चाहे अपने बेटे को पालने का कर्ता हो चाहे देश को समाज के बच्चों को पालने का कर्ता बनना हो, माने सर्वत्र किसी भी लक्ष्य से आपने अध्यवसान भाव किया, वो संपूर्ण अध्यवसान भाव त्यागने योग्य है। एक भी गुरुदेव की भाषा में बोलूं कि जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भाव पण त्यागने योग्य छे, वो भी अध्यवसान भाव है। लेकिन मतलब वो कहते अरे बंधा है ना, अध्यवसान भाव से बंद होता है, तो अब तीर्थंकर गोत्र बंधाए ना तो अध्यवसान भाव ही से बना होगा। वो कहते थोक के भाव, चाहे किसी के भला करने के भाव हों और चाहे जी के बुरा करने के भाव हों। अभी तीन प्रकार के अध्यवसान बताए थे ना, आपको याद है, बता सकते हो? घबराना नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, पूछने का काम शांति जी का, अन्ना जी का, मैं तो सतर्क करके बताते ही बताता हूं। एक तो ये बताए थे, ये जो अब मैं बोलता हूं कि ये मैं ये किया ये किया ये करूं, फिर एक मैं मनुष्य हूं देव हूं नारक हूं, फिर मैं धर्म द्रव्य को जानता हूं, तो तीन तरह के हैं। तो एक तो पुण्य पाप का भेद हो गया, मैं किसी का हिंसा करूं झूठ बोलूं, किसी को बचाने का भाव करूं मारने का भाव करूं, इसमें तो पुण्य पाप अपन को अलग दिखता है ना। अब मैं मनुष्य हूं, इसमें क्या आएगा, पुण्य पाप का भेद होता है तुम्हें है? मैं धर्म द्रव्य हूं, जो तीन प्रकार के बताए थे ना, दो में तो प्योर ऐसा भेद है ही नहीं, अकेला मारने वो बचाने वाले में है। तो ये कहते हैं किसी भी टाइप का अध्यवसान भाव हो, अब अरे जो भाव परिणाम आपको हो रहे हैं वो उन सबके बारे में कह रहे हैं, बस हम और आप सब बैठे उसमें, ये पढ़ाने का, ये समझाने का, ये शास्त्र लिखने का, यदि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक हो रहे हैं तो तभी अध्यवसान कहलाएंगे। तो कहते हैं सर्वत्र अध्यवसान अखिलम त्याजम, त्यागने योग्य हैं। अमृतचंद्र को लगा कि बहुत बड़ी बात है, सारे जगत के विरुद्ध बात है, ये मेरे नाम से नहीं चलेगी, मेरे माने अमृतचंद्र के नाम से नहीं चलेगी, लोग नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कह दई यद्युक्तम जिनई, ये बात जिनेन्द्र भगवान ने कही है। गुरुदेव इसका अर्थ कैसे करेंगे, बोलो कोई बताएगा हाथ उठा के, गुरुदेव इसका अर्थ इतना सुनते हो ना रोजीना, और सार भी निकालते हो क्या? हाँ देखा, एक छोकरे ने पकड़ा, सौ इंद्रों की उपस्थिति में, चक्रवर्ती की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, अनंत भगवान ने समोषण में कहेली बात है क्या? मैंने ये गुपत बात नहीं है कि उन्हें अकेले में किसी के कान में कह दी हो। जब भी ऐसा महत्वपूर्ण प्रकरण आता था तो वो ये बात जरूर कहते थे क्या, कि उस भरी सभा में ये बात कही थी उनने, जो सौ इंद्र उपस्थित थे, भवनालय चालीसा, बेंदर देवान बत्तीसा, होंती बत्तीसा, कप्पा मर चौबीसा, तंदो सूर्यो नरो तिरो, सबकी उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, मुनि भगवंतों की उपस्थिति में, चक्रवर्तियों की उपस्थिति में जो ये बात कही थी वो ये बात है। कौन सी बात, कौन सी बात? अध्यवसान भाव सर्वत्र, माने वो किसी भी के भी लक्ष्य से क्यों नहीं हुए हों, वो सब त्यागने योग्य है। तो ये बात तो भगवान की कही हुई है। अब पहले तो हम ये विश्वास करें कि ये बात भगवान की कही हुई है, माने क्या मतलब है कि? क्योंकि मेरी बात नहीं समझना, क्योंकि उससे आपको उतना वजन नहीं आएगा। वजन हम कोई बात पर ध्यान देते हैं ना, तो किसने कही इसके हिसाब से देते हैं। धर्म के दशरथ किताब में एक जगह ऐसा आता है कि क्या कहा इसका कोई महत्व नहीं है, किसने कहा इसका महत्व है, लिखा क्या नहीं लिखा, और उसका नीचे उसकी व्याख्या कर दी है क्या लिखा, ये मूर्ख जगत तुम्हें भगवान भी कहे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और भगवान की दिव्य ध्वनि में तुम्हारे लिए भव्य शब्द भी आ जाए तो वो बहुत महत्व का है। क्या क्या क्यों, किसने कही, वो मूर्ख ने कही है भगवान भगवान। अरे भाई लोक में अरहंत सिद्ध दशा को ही भगवान बोलते हैं, वो भगवान आत्मा वाला त्रिकाली ध्रुव भगवान अलग है, उससे किसी को संबोधित नहीं किया जाता है। तो जो हमको भगवान कह रहा है अभी, इससे बड़ी मूर्खता की और निशानी क्या है, बोलो। स्पष्ट है कि हम पर्याय से भगवान अभी नहीं है, और वो हमें ठोके जा रहा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला कह रहे भगवान थोड़ा हुआ तो अभिमान कम हो तो थोड़ा और हो जाए। बोलो क्या कीमत है उसकी। और भगवान कोई ज्ञानी धर्मात्मा इतना ही कहे कि ये तो भव्य जीव लगता है मुझे, तो उसका ही कितना महत्व है। हमें प्रशंसा सुनने के आदि है ना, तो हमें इसमें नहीं लगता है कुछ। देखो ये भगवान की किसने बात कही है, ये जिनेन्द्र भगवान ने कही है। क्या अध्यवसान भाव किसी के भी लक्ष्य से क्यों न हो, सभी त्यागने योग्य हैं। ये तो भगवान की कही हुई बात है। अब अमृतचंदाचार्य क्या कह रहे हैं, ये तो भगवान की बात को अमृतचंद ने सुनाया है। अब वे कहते हैं मेरी सुनो, मैंने अमृतचंद की, तन मन ने व्यवहार एव निखलो अपि अन्यास त्याजता, कि तुमने जो ये बात कही उसका अर्थ मैं ऐसा मानता हूं, जब तन मन ने जो तुमने ऐसा कहा उसका अर्थ मैं ऐसा मानता हूं कि अन्न के आश्रय से उत्पन्न होने वाला संपूर्ण व्यवहार त्यागने योग्य है, मैं ऐसा मानता हूं। ये बड़ा व्यवहार ही थे, चारों प्रकार का व्यवहार ही से आएगा नहीं, तन मन ने व्यवहार में निखलो अन्याश्रता त्याजता, बहुत सरल संस्कृत है ये, शास्त्री में आ गए ये तो समझ जाते हो, लघु सिद्धांत कौमली जिसने पढ़ ली वो तो सब समझ जाते हैं, बहुत सीधा और सरल है। देखो देखो मैं हरेक छंद को नीचे से बोलकर उससे तुम्हें समझाता हूं, लेकिन ये सरल बहुत ज्यादा है और आचार्य के शब्दों में तुम्हें सुनाना चाहता हूं, इसलिए बार बार मैं संस्कृत की पंक्तियां बोल रहा हूं। क्या क्या तन मन ने, इसलिए मैं मानता हूं कि व्यवहार एव निखला, संपूर्ण व्यवहार जो अन्याश्रता अन्य के आश्रय से उत्पन्न होता है वो त्याजता। मैं मनुष्य हूं तो देह के आधार पर हुआ ना, मैं दूसरे का भला करता हूं तो दूसरे के आधार पर हुआ ना, अन्य के आश्रय से उत्पन्न होता हुआ सारा व्यवहार अन्याश्रित है और सारा व्यवहार ही त्यागने योग्य है। हे है, हमने इसी गद्दी से चारों व्यवहार नयों की उपयोगिता भी खूब बताई है, भेद विज्ञान की दृष्टि से और सदाचार की दृष्टि से, अहिंसात्मक आचरण की दृष्टि से, पर मेरे ख्याल से सुबह के व्याख्यानों में टीवी पे आते हैं ना, ये आजकल यही चल रहा है, शांति जी की क्लास में भी यही चल रहा है, ये भी यही चल रहा है, हैं? और जिस दिन हमारा ये देखे ना राजेंद्र जिसकी मशीन खराब हो जाती है तो फिर वो उसी को ही लगा देता है, हैं? इस साल तुम विद्यार्थियों का बहुत बड़ा भाग्य है, किसी वर्ष में किसी को इतना सुनने को नहीं मिला। मेरा व्याख्यान तो बंद ही रहता था, टीवी पर कोई सुनते नहीं थे, क्यों, क्या ला रहा है? हैं? क्या ये क्या भिजवाया है, क्या भिजवाना है, सांझो मारा था तीसरा जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म जैसी पुण्य प्रकृतियां भी शामिल हैं, फल के भोक्तृत्व की भावना से त्याग की बात कही जा रही है। कोई बात वही है। तो तुम यहां खोजने लग गए हो तो मेरी क्यों सुन रहे हो? कल मैंने शांति जी को टोक के कहा था ऐसी बात के लिए, है ना? वो आता ना, हम आएगा अंतिम अधिकार, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, तो उसमें सब प्रतिक्रमण आलोचना आएगी ना, तो बहुत बोल करके इनके किस तरह से त्यागना उसकी बात आएगी विस्तार से, वो निकाल के बता रहे हैं। वो देखो, सभी अद्वसान त्यागने योग्य हैं,
जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही इसका तो स्पष्ट इस अर्थ यह जानिए, अन्यासित व्यवहार त्यागने योग्य है।
बोलो कितने इसके हिंदी में बिल्कुल कितना स्पष्ट आ गया है, अक्षर अनुवाद है क्या? नहीं है? सभी अद्वसान त्यागने योग्य हैं, यह जो बात विशेष दिनेश्वर ने कही इसका तो स्पष्ट अर्थ है जानिए, अन्यासित व्यवहार त्यागने योग्य। गद्य में पढ़ लो इसे, गद्य में पढ़ने पर अनुवाद ही करना पड़ेगा। बोलो तो सीधा सीधा पढ़ सकते हो, है ना? चाहे गद्य में पढ़ो चाहे पद्य में पढ़ो, है जो ये अडिल्य छंद है कौन सा? पहले पूजन पढ़ते थे ना सब, प्रथम देव अरहंत सुसत से धांत जू। बोलो बोलो क्यों पंथ जू ऐसे ये दे, सब ही अद्य बसान त्यागने योग्य हैं, ये जो बात विशेष ने कही इसका तो इस स्पष्ट। अब कुछ समझने में देख कसर रह गई तुम, फिर कितना क्लियर हो गया? जब हम इसका प्रधानवाद करते हैं तो बहुत वो रस परिपाक होता है, तब कर पाते हैं। कल में ना, आज मैंने 12 गाथाओं का पद्यानुवाद किया नियमसार की दिन में, शुद्धोपयोग अधिकार की। क्या अब देखिए, परम शुद्ध निश्चय
में कार्योगी है, शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है, यदि ऐसी है बात तुम निजन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे।
परम सिद्ध निश्चय नए का योगी है, क्यों निश्चय नए ज्ञान का भेद है ना, तो परम शुद्ध निश्चय नए का ये कौन है? उत्तरकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मेरे ख्याल में आए ना, परम शुद्ध निश्चय नए का योगी है, और वो शुद्ध निजातम राम, वो अपना भगवान आत्मा शुद्ध है, वो एक ही ध्येय है, वो शुद्धेय भी है मन दृष्टि का विषय भी है, परम शुद्ध निश्चय नय का ज्ञेय भी है और ध्यान का ध्येय भी है। ना शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है, यदि ऐसी है बात, अब वो कहते यदि बात ऐसी है तो पक्का भरोसा हो गया कि ऐसी बात है, बात ऐसी है कि तुम्हें पक्का भरोसा हो गया हो तो मुनि, तो फिर मुनि जन शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल क्यों नहीं रहते हैं? यानी फिर क्या बात रह गई कि जो यहां वहां उपयोग को भटकाते हैं? देखो इस संस्कृत में तो संत शब्द पड़ा है और अपन ने उसका मुनिजन अर्थ किया है ना? किया ना? अब वैसे तो मुनि का तो मुनि होता ही है, वो संत का भी मुनि तो होता ही है, लेकिन इस संत शब्द सज्जन पुरुष के लिए भी होता है। और अपन ने जब वो कलश आया था साधु साधु का गाथा, 16वीं गाथा, क्या साहुना निचम दंशन ज्ञान चरित्राणी सेव द्रव्याणी साहुना निच्चम तान पुनजान तन्नवि अपानम चैव निच्छेदो। तुम्हारा साधु का अर्थ किया है, याद है? अभी पहुंचे नहीं, सोलहवीं गाथा था के? साधु शब्द का अर्थ क्या है? अपने बोलते नमो लोये शब्द साहूणम, प्राकृत में से साहु बोलते हैं, हिंदी में से साधु बोलते हैं। क्या है मानो ये दा है ना, दा में एच मिलाओ तो धा बन जाता है, डी माने दा और डी एच माने धा हो गया ना। जो एच माने हा है वो कोमल स्वर है, कोमल व्यंजन है, और धा है वो कठोर है, इसे महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण का आइडिया है कुछ, है ना? इसे महाप्राण बोलते हैं। तो प्राकृत भाषा कोमल है इसलिए वो कठोर शब्दों को हटा देती है, तो उसने उसमें से वो कठोरपना निकाल दिया, इसलिए साधु से साहू रह गया। देखो साधु बोलो, जैसे कठोरता डंडा मार दिया हो ऐसा नहीं लगता, तो साहु कितना प्यारा लगता है। अभ्रंश में और प्राकृत में वो जो कठोर व्यंजन है उसको हटा देते हैं, है ना? और उसको उसमें जो कोमल व्यंजन है उसको रखते हैं, है ना? कि वैसे तो स्वर और व्यंजन तुम जानते ही होगे, लेकिन वो आता है ना हा या रा ला वा, ये सब अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये स्वर स्वर होते हैं बिल्कुल मुलायम, और व्यंजन होते हैं कठोर, जो का कठोर है ना, और आ कठोर नहीं है, तो वो उसमें से अर्ध स्वर बोलते हैं, वे इतने कोमल हैं कि अर्ध स्वर होते हैं। और हर वर्ग का पांचवा अक्षर बहुत कोमल होता है, ये ताथा दादा ना, बाबा बाबा माँ, समझ गए, काका गाघा यहाँ, ये पांच जो होते हैं अनुनासिक, ये भी बहुत मुलायम होते हैं, इसलिए वो साधु का साहु हो गया है। अब उसने कहा कि नमो लो ये सभ्य साहूणम, और मराठी में तो सभी साधु हैं, साहु शांति प्रसाद फलाने, साहु फलाने प्रसाद, साहु फलाने प्रसाद, है ना? इन सभी को कहा होगा साहुना ने चम, इन सब साहुओं को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे आचार्य भी करोड़पतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सब साहुण माने क्या, कितने साहु, शांत प्रसाद शांति प्रसाद सम, क्यों? तो वहां अर्थ किया है कि साधु तो सेवन करते ही हैं, तो वहां सज्जन पुरुष के अर्थ में अर्थ किया है। और सज्जन का फिर क्या अर्थ होता है, तो उसमें फिर मैंने वो परोपकार एक है ना, एक छंद है ना, ज्ञान आए दान आए च रक्षण आए, बोलो भूल गए? इस दुष्टों की संपत्ति काय के लिए होती है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने, आता ना छंद क्या। और सज्जन पुरुषों का ज्ञान आए दान आए च रक्षण आए, ऐसा लिखा है, उससे सिद्ध होता है कि ग्रस्तों के अर्थ में है वो साहू शब्द का प्रयोग। अब ये संत शब्द का अर्थ ग्रस्त भी हो सकता है, और पांडे राजमल जी ने ऐसा ही किया, उसको उन्होंने कहा सभी ज्ञानियों को, अपन ने लिखा ना मुनिजनों को, यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहें, यदि ऐसी है बात तो ज्ञानी क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहें। अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, यदि ऐसी है बात तो ज्ञानी अज्ञानी सभी वे अपने शुद्ध आत्मा में निश्चल क्यों नहीं रहते, कौन से अज्ञानी लिए, जिन्होंने विकल्पात्मक ज्ञान में इस परम तत्व का पक्का निर्णय कर लिया है, अभी अकेला अनुभव बाकी रह गया और सब पक्का हो गया, सारी व्यवस्था हो गई है, छह फेरे पड़ गए हैं, अकेला सातवां फेरा बाकी है, क्या वो लोग भी शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल क्यों नहीं रहते हैं। ऊपर भी लिखा शुद्ध ज्ञान घने महनमी न निजे भगनंती, उसमें क्यों नहीं बांध लेते हैं अपने को, यहां वहां क्यों भटकते हैं। जब हमने इतना कह दिया कि सभी अध्यवसान त्यागने योग्य हैं तो अब कौन सा विकल्प तुम्हें रह गया, वो कहते हैं अब कहां उलझते हो, अब तो एक हक भगवान आत्मा ही बचा तो उसमें तुम निश्चल हो गए क्यों नहीं रहते हो। शुद्ध ज्ञान घन आत्म में वे निश्चल क्यों नहीं रहते हैं ये जगत के जीव सभी के लिए, आप समझ लो। तो एक बिल्कुल मार्मिक बात है ना। अब एक दफे जो मैंने छंद बताया है हिंदी का, शांति से पढ़ो एकदम बिल्कुल बहुत शांति पढ़ो।
सभी अध्यवसान त्यागने योग है, यह जो बात विशेष जिन्हें सर ने कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए, अन्यासित व्यवहार त्यागने योग है, परम शुद्ध निश्चय नय का योगे है, शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है, यदि ऐसी है बात तो मुनि जन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इस समय सार पर निकालो नीचे से दूसरा पैरा। इस अर्थ का कलश का अर्थ है, लिखते हुए पांडे राजमल जी ने कलश टीका में कतिपय महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। उन्होंने अपने कलश टीका में चार बातें ऐसी बताई हैं जो सहज भाव से हरेक के पकड़ में नहीं आती। तो कौन सी चार बातें हैं, देखो हमने काल की आपके लिए रखी हैं कि प्रथम तो वे संत पद का अर्थ सम्यक दृष्टि जीव राशि करते हैं। वो कहते सम्यक दृष्टि जीव राशि, जीव राशि शब्द का प्रयोग जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वहां भी पढ़े हैं शंभू रमण समुद्र में बहुत, कि यही मत गिनना दो चार तुम है ना। कुछ करुणान योग में लिखे हैं कितने हैं, जो कहते हैं 9 करोड़ इतने मुनिराज हैं, तो मुनिराज इतने होंगे तो सम्य ऋषि कितने होंगे समझ लो। एक बात कि वो अवरत सम्य दृष्टि मतलब असम्य दृष्टि जीवराशि करते हैं, काय का संत का अर्थ। दूसरा मिथ्यात रूप अध्यवसान भावों को असंख्यात लोक प्रमाण बताते हैं। ये असंख्यात लोक प्रमाण में तुम करुणानियों वालों में बहुत झगड़ा पड़ता है। मैं जो यहां कहना चाहता हूं कि असंख्यात हैं और फिर लोक प्रमाण क्यों कह रहे, वे जो भाव हैं अध्यवसान भाव असंख्यात हैं, असंख्यात प्रकार की, ये तो समझ में आई, अब ये लोक प्रमाण से क्या लिखे। तो अलग अलग बहुत अर्थ होंगे, मैं वो झगड़े में नहीं पड़ता हूं। तो ये कह रहे हैं कि असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है। सबसे छोटा असंख्यात कौन है, जो संख्यात से एक ऊपर हो वो असंख्यात हो गया ना। और सबसे बड़ा कौन है, जो अनंत के एक नीचे हो। अब समझ लो तुम कि कितने भेद होंगे, असंख्य भेद होते हैं। तो कहते हैं इसमें कौन सा असंख्यात ले रहे हैं क्या, तो कहते लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्यात लोग, उसका नाम है असंख्यात लोक प्रमाण। लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने लोग, समझ गए ना, ऐसा अर्थ मैं करता हूं है ना। और दूसरे जो करते हैं वो उनसे समझ लेना और मेरा मुझसे समझ लो, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना किसी से, समझ गया ना। असंख्यात कौन सा असंख्यात, कि लोक प्रमाण वाला लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्यात लेना। तीसरा व्यवहार भावों को सत्य रूप और असत्य रूप दो प्रकार के बताते हैं, है? सत्यार्थ है और असत्यार्थ है, अभी पढ़ा रहे ना शांति जी तो अधिवेशन की टीका के आधार पर 11वीं का थाना। और चौथे वे मिथ्यात्व भावों को और व्यवहार भावों को एक ही कहते हैं, चाहे मिथ्यात्व कहो और चाहे व्यवहार कहो भी कहते हैं। देखो ये बहुत खतरनाक बात है। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि बनारसी दास तो बस कलश टीका से चेते रहते हैं। देखो कलश टीका में इन्हीं कथनों को आधार बनाकर पंडित बनारसी दास जी ने इस कलश का भावानुवाद इस प्रकार किया है। देखो पढ़ो।
असंख्याते लोक परवान जे मिथ्याते भाव ते व्यवहार भाव केवलियो कत है जिनको मिथ्याते गयो सम्यक दरस भय ते नियत लीन व्यवहार सो मुकत है निर्विकलप निरुपाधि आत्म समाधि साधि जिस गुण मुख पंक्ति को ढुकत है ते ही जीव परम दशा में फिर रूप हुई के कर्म में धुक न कर्म सौ रुकत है।
उन्होंने कह दिया ना ये असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्यात्व भाव हैं वे ही व्यवहार भाव हैं ऐसा केवली भगवान कहते हैं। पहली पंक्ति में कह दिया ना उनने कहा था मिथ्या व्यवहार एक है। उन चार बातों में दो बातें तो आ गई बनारसी दास ने बन के असंख्यात लोग प्रमाण वाली बात आ गई ना और जो मिथ्या भाव है वे ही व्यवहार भाव है दो बात आ गई ना और एक केवली उकत है ये भगवान ने कहा है जिनको मिथ्यात्व गयो और सम्यक दरस भयो और उनकी उनको भी मुनिराज कहते हैं उनको भी यति क्या कौन सा संत कहते हैं क्या वे कहते ये उनकी बात है हर सम्यक दृष्टि की जिनको मिथ्यात्व गयो सम्यक दरस भयो ते नियत लीन वो निश्चय नये में लीन है। इनमें कहा था तुम क्यों नहीं उसमें लेते हो आश्रय इसमें कहा था मुनिजन उसका आश्रय क्यों नहीं लेते हैं फिर तो कहते उसमें लीन ही है क्यों नहीं लेते हैं का सवाल क्या खड़ा होता है। और ये वे जीव व्यवहार से मुक्त हैं व्यवहार ऐसा नहीं कि निश्चय से मुक्त नहीं है वे कहते व्यवहार के बंधन से वे छूट गए हैं। व्यवहार माने मिथ्यात्व तुम व्यवहार से मुक्त हैं माने मिथ्यात्व से मुक्त हो गए छूट गए निर्विकल्प और निरुपाधि आत्मा की समाधि में को साध कर वे सुगुण मोक्ष पंथ में धुकत हैं वे सर्वश्रेष्ठ मोक्ष के रास्ते में धुकत हैं मतलब समझे ना बहुत तेजी से चल रहे हैं। तेई जीव परम दशा में फिर रूप होए के वे उत्कृष्ट दशा में स्थिर होके धर्म में धुके वही धुकत धुकत ऊपर आया था यहां भी आ गया वही धुके और न कर्म सो रुकत हैं एक कर्म का उदय आएगा तो गिर जाएंगे ऐसी बात नहीं कहते हैं। वो ग्यारहवें गुणस्थान में भी कर्म का उदय आ जाता है तो पहले गुणस्थान में आ जाते हैं वो तो कर्म की महिमा बताते कर्म है। ये तो कहते हो कि जीव अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण कमजोरी रूप जब वो ग्यारहवें गुणस्थान से पहले में आता है तो उस वक्त उसे कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। ऐसा जवाब देंगे कर्म के उदय से गिर गए ये बात ही नहीं है क्या वो जबरदस्ती उनको है? वो लगाते हैं मैं तो ऐसा उदाहरण बहुत टाइम हो गया चलो कल करेंगे।